मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 24 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं श्याम कुमार सिंह, आप साहिबगंज झारखंड से हैं, यश कुमार पाठक, आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, और रेखा पाल, आप फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। तो श्याम, यश और रेखा, आप तीनों युवा साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों धीरे धीरे ये जो कारवां है यानी कि 11 मार्च का कारवां जो 25 मार्च तक एक साथ मार्च करेगा यानी कि चलेगा, धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और सच में एक तरह की जिज्ञासा, खुशी और प्रतीक्षा भी मन के अंदर पैदा होती चली जा रही है कि कब जल्दी से 11 मार्च आए और हम सब एक दूसरे के आमने सामने बैठकर सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में ढेर सारी बातें करें और फिर उनका फायदा उठाएं और साथ ही साथ उन क्षणों को एंजॉय भी करें। मित्रों मैं चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने भी दाखिला लिया है वो इसी तरह की भावनाओं को अपने मन के अंदर पैदा करने की कोशिश करें, अपने अंदर जिज्ञासा का भाव पैदा करें, प्रतीक्षा का भाव पैदा करें। देखिए प्रतीक्षा में बहुत अद्भुत आनंद है, बहुत आनंद है। मिलन में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद प्रतीक्षा में है। और अगर आप प्रतीक्षा को आनंदपूर्ण बना देते हैं तो आप मान करके चलिए कि जब मिलन होगा तो वो मिलन कई गुना ज्यादा और आनंद देने वाला होगा। और यहां मैं जो आनंद की बात कर रहा हूं मित्रों वो ज्ञान से प्राप्त होने वाले आनंद की बात कर रहा हूं। थोड़े से अपने मनोवैज्ञानिक सिचुएशन को उसमें ढालने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आएगा और उसके स्वाद को आप महसूस करेंगे यहां आने के बाद। और आप मुझे बताएंगे कि सर वास्तव में आपने जो बात कही थी उसे हम यहां महसूस कर रहे हैं। तो मित्रों इन तीन दोस्तों के साथ ही साथ उन सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं जो 11 मार्च को यहां भोपाल में क्लास में आने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। दोस्तों आज मुख्य विषय के रूप में मैं दावोस पर कुछ बातें करूंगा। दावोस में भारत, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे, दावोस में भारत। लेकिन इससे पहले कुछ मैं दूसरे तत्वों पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि कल की जो न्यूज है उसमें सच पूछिए तो न्यूज के लिए एज सच कुछ नहीं है कि हम लोग उस पर बात कर सकें। उसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो दावोस में भारत को ही लेकर के हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे अखबार से मिली हैं वो मैं जरूर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जैसे ही कोई शब्द मिलता है या कोई घटना ऐसी होती है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो उसे उसी के आसपास ही यानी कि एक दो दिन के आगे पीछे बता देना बेहतर होगा बजाय इसके कि उसे इकट्ठा करके बताया जाए। तो मैं आज आपको दो तीन पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा मित्रों। और खासकर इसमें आप ये भी देखिएगा जब मैं बताता हूं तो आप देखिए केवल उस इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा मान करके मत चलिए प्लीज कि सर ने बता दिया, हमने नोट कर लिया, हमने सुन लिया और हम परीक्षा में जब आएगा तो उसके बारे में कुछ लिख देंगे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कैसे तैयारी की जाती है या किसी भी घटना से, किसी भी लेख से कैसे अपने लिए चीजें नोट की जाती हैं। अब आप 2000 शब्दों का एक बड़ा सा लेख पढ़ रहे हैं और पता लगा कि उसमें आपके काम के सिर्फ 20 शब्द हैं। आप देखिए कि उससे ज्यादातर मतलब 1980 शब्द तो बेकार ही है लेकिन वो 20 शब्द पढ़ने के लिए आपको 2000 शब्द पढ़ने पड़ेंगे। अब वो 20 शब्द जो आप छांटेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो अब आप छांटेंगे कैसे, ये छांटने की जो कैपेसिटी होती है उसी को पैदा करने की कोशिश सच पूछिए तो ये डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से मित्रों मैं कर रहा हूं। और मानकर चलिए कि अभी तो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जितना भी फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा उसका प्रमाण आप ही मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे ईमेल के जरिए। लेकिन आप देखेंगे कि लाइफ में आगे चल करके भी आपको इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा क्योंकि जबकि दृष्टि तो दृष्टि होती है ना, आप अपनी इन आंखों से, ऐसा थोड़ी है कि केवल घर देख सकते हैं या केवल पेड़ को देख सकते हैं, घोड़ा नहीं देख सकते, चूहे देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर आंख है, आंखों में रोशनी है, तो जो भी चीज आंखों के सामने लाई जाएगी आप उनको देखेंगे। तो सच पूछे तो यह भी एक तरीके की आंख पैदा करने की ही कोशिश है। फिर आप जिन चीजों को भी देखेंगे, जिन चीजों को भी पढ़ेंगे, जिन चीजों को भी सुनेंगे, उसमें फोकस किस पर करना चाहिए, आपके काम की चीज कौन सी है, आप उसे एकदम से पकड़ लेंगे। और आप कल्पना करके देखिए कि इससे आपके जीवन की गुणवत्ता कितना अधिक, कितनी अधिक बढ़ जाएगी। तो मित्रों, मैं आपको दो तीन चीजों के बारे में आज बताना चाहूंगा और उसको थोड़ा सा आप इस नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए जिसकी बात मैंने अभी कही। कल हम लोगों ने संसदीय सचिव की बात की थी जो आप पार्टी के 20 विधायकों को लेकर के चल रही है ना। मैं संसदीय सचिव के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर हाईलाइट करूंगा। देखिए दोस्तों, जो संसदीय सचिव का पद है वो कोई संविधान का पद तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें कुछ लिखा हुआ हो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये जो संसदीय सचिव का जो पद है, इनफैक्ट ये अस्तित्व में कब आया या लोगों ने इसके बारे में कब अपॉइंट करना शुरू किया, ब्रिटेन में भी ये होता है, अमेरिका में भी होता है, कनाडा में भी होता है, राइट। हुआ क्या कि भारत में जब एक संशोधन आया, संविधान संशोधन, उसका जो अनुच्छेद है 164, ये नोट कर लेना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैंने कहा कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होनी चाहिए। 164, अनुच्छेद 164 ब्रैकेट में 1A, इसको आप नोट कर लीजिए और रट डालिए इस साल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुच्छेद 164 ब्रैकेट में 1A ये है क्या? इसके तहत ये प्रोविजन किया गया कि चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो, राइट, मतलब यानी कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, संसद नहीं कहना चाहिए, लोकसभा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके जितने भी सदस्यों की संख्या होगी उसके 15% सदस्य ही केवल मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे लोकसभा की सदस्य संख्या, मैं राउंड में कह रहा हूं ना, कि मान लीजिए कि 500 है लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो मंत्री जो बनाए जा सकेंगे वो 15% यानी कि 500 का 15% का मतलब हो गया 75 लोग, बस केवल मंत्री बनाए जा सकेंगे। क्योंकि इससे पहले ना बहुत लोग मंत्री बनाए जा, कितनी बड़ी बड़ी मंत्री परिषद बन जाती थी और आफ्टर ऑल उससे खर्चा होता था, लोगों को संतुष्ट करने के लिए, पार्टी दल बदल कराने के लिए इन सबका इस्तेमाल करता था, तो 15% फिक्स कर दिया गया। जब ये फिक्स किया गया तो अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो फिर हमारे यहां पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की बात आने लगी, संसदीय सचिव की, तो कुछ राज्य अपॉइंट करने लगे, राइट। अब आपने छत्तीसगढ़ की भी अभी बात सुनी कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा किया गया और अभी भी दूसरे राज्यों में भी है। यह अंतर थोड़ा सा दिल्ली और छत्तीसगढ़ में देखिए यह है कि छत्तीसगढ़ में जब अपॉइंट किया गया 67 वगैरह में छत्तीसगढ़ में अपॉइंट किया गया था पहली बार संसदीय सचिव। देखिए संसदीय सचिव बेसिकली सच पूछिए तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन सब उनकी मदद करने के लिए होते हैं, है ना, कि उनके काम में मदद कर रहे हैं, लायजा का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी मंत्री ने कहा उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, उन्होंने मध्य प्रदेश ने किया क्या था कि बकायदे उन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार दिया कि अगर वो चाहे तो संसदीय सचिव का पद वो बना सकते हैं और इसके बाद वो उसको ये भी निर्णय ले सकते हैं, यह भी घोषणा कर सकते हैं कि ये जो पद है यह बेसिकली लाभ का पद है या नहीं है। तो इस मामले में तो उन्होंने सेव कर लिया, लेकिन दिल्ली ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद मैंने आपको बताया है ये आपके बहुत काम का है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब एक शब्द है वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि प्री एग्जाम में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं और वह शब्द है फिनटेक कंपनी। फिनटेक कंपनी कि ये फिनटेक कंपनी क्या हो, क्या है? जब इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूं या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता हूं तो इस तरह के शब्द सामने आ जाते हैं, तो उसी के आधार पर मैं आपको फिनटेक कंपनी की थोड़ी सी परिभाषा बता देता हूं, ये होती क्या है, बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। जो बेसिकली फिनटेक है, देखिए दो शब्दों से बना हुआ है, फिन फिनेंशियल, फाइनेंशियल, टेक टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी कंपनियां फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी आप कह ले, तो ऐसी कंपनियां जो अपने यहां के फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको छोड़ करके, ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ करके और जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नवाचार जो कर रहे हैं उनको कहा जाता है फिनटेक कंपनी। अब देखिए कि बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया गया और हमें नहीं मालूम है तो ये सिंपल भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा और हम बेवजह अपने 2 मार्क्स खो देंगे। तो बीच बीच में मैं इस तरह के भी शब्दों की जानकारी आपको देता रहूंगा। मित्रों, आज मेरे पास 1-2 शब्द और है, लेकिन चलिए उनको हम लोग बाद में देखेंगे, मैं नोट कर लेता हूं। अब मुख्य विषय पर आते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा किसी भी मायने में कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, आज का मुख्य विषय है दावोस में भारत। दावोस के बारे में मैं चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा रिजॉर्ट है, शहर है, 11,000 की केवल आबादी है और यहां हर साल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका यह सम्मेलन होता है और अखबारों में इसके बारे में खूब लिखा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसने बनाया, कब बनाया, क्या हुआ, वो सब आप लोग देख लेंगे। प्लीज, उसको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वर्ल्ड की दृष्टि से नहीं कह रहा, वर्ल्ड की दृष्टि से तो है ही। आप देखिए कि पूरी दुनिया के कितने देश वहां, देश के लोग वहां पहुंच रहे हैं और वो विश्व के बारे में बातचीत होगी, तो जो इतना बड़ा फोरम हो तो उसके उसका महत्व तो अपने आप ही प्रतिपादित हो जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात मैंने इसलिए की कि आप अपना 2017 का जो प्री का पेपर है, जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, उसको उठा कर देखें। अगर आपके पास उसका सेट 1 होगा तो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। उस क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और यही हमें अब तैयारी करने का एक तरीके का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिंग अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है, और इसके बाद 4 ऑप्शन है, विश्व आर्थिक मंच, यूएन मानव अधिकार परिषद, यूएन विमेन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंग्लिश में मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, सी यूएन विमेन एंड डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रश्न पूछा गया है, राइट? इसका मतलब है कि ये संस्था महत्वपूर्ण तो है, तो आपको इस संस्था के बारे में क्या क्या करती है थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। आप ये मत समझिएगा कि अगर पिछली बार पूछ लिया गया है तो इस बार अब आपके लिए वह महत्वपूर्ण नहीं है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 सबसे बड़े मुद्दे उठाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 3 मुद्दे हैं ये विश्व समस्या से जुड़े हुए हैं। नो डाउट कि हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं और एक बहुत बड़ा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि विश्व के देशों को भारत की आर्थिक शक्ति और स्थितियों के बारे में बताना, हम बताएं कि कैसे हमारे यहां निवेश करना उनके लिए फायदेमंद होगा, कैसे हमारे यहां युवा शक्ति बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम स्थिति हमारी बेहतर होती जा रही है, कानून को हम सरल बनाते चले जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को हम कम कर रहे हैं। इन सारी बातों को प्रधानमंत्री जी ने वहां दुनिया के सामने रखा है ताकि दुनिया के लोग भारत में आकर उद्योग निवेश भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सके, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में हमें सफलता मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को दुनिया के सामने उठाया। इसका मतलब यह है कि भारत अब केवल अपने ही बारे में नहीं सोच रहा है बल्कि दुनिया के बारे में सोच रहा है। उसका जो विजन है वो वर्ल्ड विजन है, सही मायने में ग्लोबलाइजेशन का विजन है। देखिए, वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है मित्रों। उसमें जो पहला है वो टेररिज्म, आतंकवाद। और आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाएंगे, यूएनओ का मंच हो, जहां भी, हमेशा आतंकवाद की बात करते हैं। और स्वाभाविक भी है क्योंकि आतंकवाद से भारत बहुत जबरदस्त रूप से परेशान है, पूरा विश्व ही परेशान है लेकिन भारत कुछ ज्यादा ही परेशान है, और परेशानियों का कारण आप जानते हैं। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। किस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के सामने संकट है, जिसमें भारत भी शामिल है। इससे कुछ समय पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद एक डेढ़ महीने पहले मैंने एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत का जो कृषि चक्र है, जो भारत के फसलों पर किस तरीके से जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है। तीसरी जो बात है मित्रों, वो है संरक्षणवाद, कि किस तरह से संरक्षणवाद पनप रहा है। और बेसिकली ये जो संरक्षणवाद है, ये पूरी तरह से जो ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। मित्रों, ये जो संरक्षणवाद है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और अगर कल कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और नहीं आया, तो कल के मुख्य विषय के रूप में मैं आप लोगों से संरक्षणवाद पर ही बात करना चाहूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए संरक्षणवाद को समझना बहुत जरूरी है। बल्कि अब तो मुझे ये लगने लगा है कि विश्व राजनीति में जो नई किस्म की प्रवृत्तियां उभर रही है, उनको जानने के लिए भी इस संरक्षणवाद को समझना आवश्यक है। तो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लग रहा है, हो सकता है कि इस पर हम लोग कल बात करें। और यदि किसी वजह से कल बात नहीं कर सके, तो मैं इसे नोट कर लेता हूं, डेफिनेटली कमिंग वीक में हम लोग इस पर जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं मुख्य विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं ढेर सारी क्लिपिंग्स आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें दावोस पर सबसे ज्यादा क्लिपिंग्स आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो बहुत सी चीजें वहां भी आपको क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मेल बहुत मिले हैं, लेकिन नाम लेने का अवसर मुझे केवल तीन दोस्तों का ही मिल रहा है। और ये तीन दोस्त हैं शानवाज मीर, तिलोका राम चौधरी बाड़मेर राजस्थान से, और हरि ओम सोनी चित्रकूट मध्य प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।